ओम शांति। आज 26 दिसंबर 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे सायं 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस पर आप सवेरे शाम को रोजाना उसी लिंक से जुड़ सकते हैं। और अभी हमने जो नया प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने का, हर प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं, उसके लिए रात को 8 बजे शुरू किया है। उस पर भी आप उसी लिंक पर जुड़ सकते हैं। प्रोग्राम का नाम है आप कौन बनेगा पद्मा पद्मपति। सब बनेंगे पद्मा पद्मपति। तो इसमें हम सभी एक ही प्रकार से एक को कोई पॉइंट मालूम है, दूसरे को कुछ मालूम है, तो सबके सहयोग से हम सभी एक समान बराबर बन जाते हैं। जो बाद में भी इस वीडियो को देखते हैं उन्हें भी महसूस होगा कि हम भी उनके समान हो गए, चाहे हम जानते थे या नहीं जानते थे, हमारा कोई ना कोई बाबा का ज्ञान का पॉइंट हमें मिला और वो हमारे जीवन में जुड़ गया। तो इस प्रकार से ज्ञान की बातें हमारे जीवन का हिस्सा बनती जाएंगी। और आपका कोई प्रश्न, यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा तो इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, जिस पर आप मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो, ये पढ़ाई है पतित से पावन बनने की। तुम्हें ये पढ़ना और पढ़ाना है, ये पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। प्रश्न, दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधियारा है? दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधियारा है? कौन सा ज्ञान है दुनिया में? आज सारी दुनिया माया का ज्ञान। ये माया का ज्ञान क्या होता है? माया माना,
माया माना, ये दिखाई नहीं देता, ये
दिखाई नहीं है, जो नहीं है, जो नहीं है। अब मुझे, अब मुझे कोई ये बताए कि क्या नहीं है, हमने जिसको माया कह रहे हैं वो क्या नहीं है? ज्ञान गुण शक्तियां नहीं है अब हमारे पास, मतलब ज्ञान गुण शक्तियां हमारे पास नहीं है तो हम इसको माया कह रहे हैं। गुण का ना होना, ज्ञान का अभाव, ज्ञान नहीं है, जितना ज्ञान कम हो गया तो हमने उसको क्या कह दिया? माया है भाई। जितना खाली हो गया भाई, मतलब हमारे पास पहले
नहीं है तो बुराई है।
पहले हमारे पास 100% ज्ञान था, अब हमारे पास 90% ज्ञान है तो 10% क्या है? माया,
माया
नहीं, अज्ञानता को माया, तो उसको हम माया कहते हैं। जो हमने खाली कर दिया उस खाली को हम माया कहते हैं। अब जब हम 100% ज्ञानी हैं, उस समय भी खाली है कुछ? उस समय अज्ञान बिल्कुल नहीं है ना,
अज्ञान की माया भी नहीं।
हाँ जी,
माया भी नहीं,
माया की अज्ञान,
मतलब माया का अर्थ हमने लिया नहीं है जो, ठीक है। हमारे पास अब 100% ज्ञान था तो हमारे पास माया नहीं थी, माया नहीं है, ठीक है। अब ज्ञान 90 हो गया तो हमने कहा 10% माया है, ज्ञान 10% हो गया तो 90% हमारे पास क्या है? माया है, ठीक है करें। अब माया माना नहीं है जो, अब जब अज्ञान नहीं है तो उसको क्या कहेंगे?
जब अज्ञान नहीं है तो ऐसा नहीं है उसमें ज्ञान हो,
उसे माया नहीं कहेंगे?
ना, अज्ञान नहीं है तो फिर भी उसको माया कहेंगे। क्यों?
ज्ञान को भी भाई माया,
क्योंकि ज्ञान तो नहीं है, ज्ञान नहीं है तभी तो माया नहीं है।
हाँ,
ज्ञान नहीं है तो माया नहीं है। जब हम कहेंगे हमें ज्ञान नहीं है
पे ही जाती है
तो हम ये नहीं देखते कि हम ज्ञान है हमें, जब ज्ञान नहीं है।
भाई जी ये दोनों चीज अंदर ही है, इसको एक बढ़ेगी तो एक घटेगी, एक घटेगी तो एक बढ़ेगी।
मतलब ज्ञान देखो, ज्ञान बढ़ा उसकी जगह, ज्ञान कम हुआ तो उसकी जगह पर अज्ञान आ गया।
हाँ,
अज्ञान आने को हमने, अज्ञान आने से पहले जो स्पेस बना उसको हमने माया कहा, या अज्ञान को माया कहते हैं? प्रेम का अभाव हुआ, जितना प्रेम कम हुआ उस खाली जगह को, उस गैप को भरने के लिए अशांति आई या नफरत आई,
तो गैप को माया बोलेंगे। और जो घृणा आई वो हो गया आपका असुरी विचार।
भाई मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप मेरी बात को, प्रश्न को, मेरे दिमाग में जो सवेरे से प्रश्न उठा हुआ है वो ये है, माया का अर्थ है नहीं है जो, हमारे अंदर जो भी गुण था
गैप को बोलेंगे, उस गैप को बोलेंगे माया।
मैं वही बोल रहा हूँ बहन जी, आप बार बार उसी को कह रहे हो, मतलब माया वही है जो खाली है, ठीक है कि नहीं? अब उसकी जगह पर क्या आ गया? अज्ञानता आई। अज्ञानता आने से पहले वो खाली हुआ ना, जैसे एक गिलास में से मैंने दूध पिया, जितना मैंने गिलास को खाली किया उस खाली जगह पर आकाश आ गया, ठीक है? उस खाली जगह को हम, वहां पर यदि कुछ और आता तो उसके आने को भी कहते कि वो आ गया। जो उसने कि आकाश है, उस जगह पर कुछ और भी आ सकता है। तो कहने का मतलब पहले खाली किया, खाली करने को हम नहीं है जो, उसको हम माया कहते हैं। अब बात सर,
उसको रावण कहेंगे, जो आया ना उसको रावण कहेंगे,
जो उसकी जगह पर आया उसको रावण कहेंगे, क्योंकि जो गुण है वो हमको सुख देते हैं, उसकी जगह पर जो आते हैं उसको क्या कहते हैं? रावण कहते हैं, उसे हम दुख कहते हैं। इसलिए शब्द बनाया था कि माया फिर रावण, माया की जगह पर आया रावण जो आकर हमें दुख देता है,
बुराई मतलब,
ठीक है करें? अब हम 100% अज्ञानी हो गए हैं,
माया भी आ गई,
दोनों तो साथ नहीं रहेंगे, दोनों तो साथ नहीं रहेंगे, एक जाएगा तो एक आ जाएगा।
मतलब हमारे पास नहीं, मेरा क्वेश्चन मेरे को सवेरे से चल रहा है जिस पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि मैं 100% अज्ञानी हो गया हूँ, ठीक है? अब 100% अज्ञानी में माया आई है, मतलब अज्ञान कम हुआ है, माया नहीं आएगी?
ज्ञान आप
देखो, मैं क्या बताऊं,
ज्ञान खत्म हो गया ना, अब अज्ञान खत्म होगा तो ज्ञान आएगा ना।
अब एक बात और है, जैसे प्राप्त है,
अज्ञान खत्म होगा तो ज्ञान आएगा ना, खत्म होने से पहले फिर भी माया आएगी।
ज्ञान अज्ञान होगा तो ज्ञान कैसे कैसे हो सकता है? ज्ञान देने वाला
में दो तलवार नहीं हो सकती। अब
हम कह जी
प्रकाश,
अब ज्ञान नहीं है, मान लिया अज्ञान नहीं है, इस समय ज्ञान आ गया, ज्ञान देने वाला भी तो हो ना, ज्ञान तो है बंदा, ज्ञान तो एक आदमी है, उसे पढ़ाने वाला तो।
अच्छा चलो मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने आपको पहले भी दिया है वो एग्जाम्पल, प्रकाश का हमने एक बल्ब के ऊपर मीटर लगा दिया है, 1000 वाट का बल्ब लगा दिया है, 1000 वाट का बल्ब का हमने मीटर डाउन किया, एक कम किया, अब 999 वाट का बल्ब हो गया, हमें कोई फर्क नहीं दिखाई दिया, एक और कम किया, एक और कम किया, एक और कम किया, और जब वो 750 पर पहुंचा तो हमें लगने लगा, तो हमने सोचा कि अच्छा ठीक है, इसमें 250 वाट जो है ना क्या आ गई है, माया आ गई है, कमी आ गई है। अब उसके बाद हम उसको और भी कम करते जा रहे हैं, और भी हम कम करते जा रहे हैं, और आखिर हमने बिल्कुल उसे बंद कर दिया, तो एकदम डार्कनेस हो गई कमरे में, सुने। अब हम वहां पर एक वाट का फिर से बल्ब जलाते हैं, सिर्फ एक का, हजार की जगह एक का, तो एक वाला लाइट उतने तो नहीं करेगा जितनी कमरे में हो। तो अब उस एक वाट को आने के लिए वहां भी तो अंधेरे को कम करने के लिए माया आई होगी कि नहीं आई होगी, उसको माया तभी तो लाइट आई, यही है ना, ज्ञान और अज्ञान का ही है ना। तो वास्तव में माया हम खाली जगह को कहते हैं, कुछ ना होने को कहते हैं। और जब हम देखते हैं ये भी खाली होना केवल समझने के लिए और समझाने के लिए है, समझने के लिए और समझाने के लिए है, परंतु वो खाली एक साथ जैसे ही ज्ञान का अभाव हुआ, अज्ञान उसी समय ही उस जगह को ले लेता है और उसमें कोई देरी नहीं लगती। इसी प्रकार से यहां भी माया कह सकते हैं, परंतु यहां पर क्या होता है कि बाबा ने हमें जो सबसे बड़ी बात समझाई है, जो आपने सबको बतानी होगी, कि बाबा कहते हमारी बैटरी बिल्कुल बंद नहीं हो जाती, जीरो नहीं हो जाती, ठीक है ना। ये मुरली के मतलब इस बात यहां पर माया को आने का इसलिए महत्व नहीं रहता क्योंकि बैटरी जो है एकदम जीरो नहीं हो जाती है, कुछ ना कुछ 1% 2% अभी रहती है, और जहां से फिर आपने दोबारा से उसका नंबर बढ़ाना शुरू कर दिया, मतलब आप मान लो 4 पे पहुंचे थे, 3 पर पहुंचे थे, थी तो सही ना कुछ ना कुछ, फिर आपने
एक वो आया था, हाँ, फिर वो 4 होती,
फिर आपने 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, तो मतलब ज्ञान ने प्रकाश ने अपना स्थान बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपना स्थान बढ़ाना शुरू किया तो माया कम होती गई और अज्ञानता भी कम होती गई, अंधेरा भी कम होता गया। तो माया हम केवल जब ज्ञान में अभाव आता है उस समय हम माया का प्रयोग करेंगे, परंतु अज्ञानता में कमी आने पर हम माया का प्रयोग नहीं करें।
इसका मतलब ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, पर मतलब अज्ञान खत्म हो जाता,
हाँ, अज्ञान अज्ञानता दूर हो जाती है, अंधकार खत्म हो जाता है,
ज्ञान पॉइंट रहता है, एक पॉइंट, ये मतलब हुआ जी,
मतलब ज्ञान, हाँ जी,
जिस समय जैसे आप जपती सलाम है अज्ञान दूर हो रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, जैसे
हाँ हाँ, अब हम जैसे बाबा के आने से, बाबा से मिलने से हमारे पास ज्ञान ने बढ़ना शुरू कर दिया, तो ज्ञान बढ़ता जा रहा है तो माया भी कम होती जा रही है और अज्ञानता भी कम होती जा रही है, अंधेरा भी कम होता जा रहा है। तो माया का ज्ञान जिस समय हमारे पास माया थी, अर्थात जिस समय हमारे पास गुणों का अभाव था, उस समय हमारे जो काम थे, हमारी जो नॉलेज थी, वो विनाशी दुनिया की नॉलेज थी और उससे विनाश होना है। विनाशी दुनिया के ज्ञान से हमने क्या करना है, विनाश होता है, मून तक जाते हैं, मंगल ग्रह तक भी जाने की सोच रहे हैं और भी दूसरे उस पर जाने की सोच रहे हैं, परंतु मून तक जाते हैं ये ज्ञान बहुत है, लेकिन नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ज्ञान किसी के पास नहीं, पुरानी दुनिया का ज्ञान किसी के पास नहीं है, नई दुनिया और नई दुनिया का भी ज्ञान किसी के पास नहीं है। क्या हमारे पास नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ज्ञान है? हम किसे नई दुनिया कहते हैं? हम सत्य को नई दुनिया कहते हैं और पुरानी दुनिया किसको कहेंगे? हम कलयुग को कहते हैं पुरानी दुनिया और सत्युग को कहते हैं नई दुनिया। अच्छा, दुनिया वाले क्या कहते हैं?
संगम पर ये दोनों दुनिया
है, वो पुरानी दुनिया, सत्युग को वो कहते हैं वो पुरानी दुनिया थी, अब नहीं है, कलयुग नई दुनिया। और हमारी सोच एकदम विपरीत है, ठीक है ना। बाबा ने हमें समझाया कि सत्युग हमारे लिए नई दुनिया है और कलयुग हमारे लिए पुरानी दुनिया है, परंतु दुनिया वाले समझते हैं सत्युग पुरानी दुनिया वो थी, आज ये कलयुग जो है नई दुनिया।
अब उससे आगे जैसे जैसे होगी वो नई दुनिया होगी, ये फिर पुराने उनके साथ जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है उसको पुराना कहते जा रहे हैं, इसको नया।
वो तो अगर हर सेकंड पुराना होता जाएगा, मकान बना एक घंटे बाद एक घंटा पुराना हो गया जी मकान, कोई भी चीज।
हम उसको दूसरे रूप में ले रहे हैं।
हमें बाबा ने समझाया ना, हमें भी पता नहीं था कि सत्युग जो है वो पुरानी नई दुनिया है और ये पुरानी दुनिया है, क्योंकि हम देख रहे हैं अपने वर्ल्ड ड्रामा के अनुसार। जब हम आते हैं उस समय हम सत्व प्रधान होते हैं, उस समय नई दुनिया का आदि होती है, और अब पुराने सारी जो दुनिया थी उसका अब अंत होने वाला है। हम देख रहे हैं कि अब ये पुरानी दुनिया, मतलब हमारी सोच का अंतर है कि दुनिया कितनी पुरानी हो गई है।
सोच पहले वही थी जो औरों की है, ये तो अब बदली है।
सोच बदले, मतलब हमारी सोच में, मतलब दुनिया की सोच में अंतर ये है। वो देख रहे हैं कौन पहले बना था, वो पुराना है, और आज वो दुनिया पूरा इस दुनिया को इस नजर से देख रहे हैं। पर तो हम ये देख रहे हैं कि वो जब हम आए थे वो नई दुनिया थी, अब वो धीरे धीरे क्या हो गई है, पतित हो गई है, तमो प्रधान हो गई है, नीचे बॉटम में चली गई है। हम इसको कहते हैं ये हर कल्प के लिए पुरानी दुनिया होती है, वो नई दुनिया होती है। देखने का नजरिया ही हमारा बदल गया, विपरीत हो गया है।
नई दुनिया और पुराने दिनों में आपके हिसाब से पहले क्या था, तो आज कितनी प्रोग्रेस हो गया, टेलीफोन आ गया, मोबाइल।
ज्ञान किसी के पास नहीं है, प्रॉब्लम की बात है, ज्ञान किसी के पास नहीं। सब अज्ञान अंधियारे में है सारी दुनिया, क्योंकि सच्चा सच पता ही नहीं है। सच सिवाय बाप के हमें दे नहीं सकता था, सच्चा ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। सभी ज्ञान नेत्र से अंधे हैं, सारी दुनिया ज्ञान नेत्र से अंधी है। तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अब हमें मिला है ज्ञान का तीसरा नेत्र जो बाबा ने आके हमें दिया है, मिलता है। तुम नॉलेजफुल बच्चे जानते हो उन्हों की ब्रेन में विनाश के ख्यालात हैं, उनके दिमाग में क्या है, विनाश के ख्यालात हैं, तुम्हारी बुद्धि में स्थापना के ख्यालात, तुम्हारी बुद्धि में क्या है, स्थापना के ख्यालात हैं, उनकी बुद्धि में क्या है, विनाश करो विनाश करो विनाश करो, आग लगाओ सारी दुनिया को मार डालो। और बाबा ने हमारी बुद्धि में डाल दिया है कि तुमने नई दुनिया की स्थापना करनी है, क्योंकि तुम्हें नई दुनिया का मालिक बनना है। ओम शांति। बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं, इनको जीव कहा जाता है, इस शरीर को क्या कहा जाता है, जीव कहा जाता है। इनमें आत्मा भी है और मैं भी इसमें आकर बैठता हूं, जिनके शरीर में इनकी आत्मा भी इस शरीर के अंदर है और मैं भी इसके साथ आकर बैठता हूं। ये तो पहले पहले पक्का, ये तो पहले पहले पक्का होना चाहिए। इनको दादा कहा जाता है, ये ब्रह्मा बाबा, ये दादा कहा जाता है इनको। ये निश्चय बच्चों को बहुत पक्का होना चाहिए, ये दादा है, इनके तन में जो आए हुए हैं वो हमारे बाबा हैं। इस निश्चय में ही रमण करना है, हमेशा इसी निश्चय में रहना है। बरोबर बाबा ने जिसने पधरा मणि की है, तो वे बाप खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूं। बच्चों को समझाया गया है, ये है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान, सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान, श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, सबसे अच्छी ऊंची मत। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है एक भगवान की, जिसकी ही श्रेष्ठ मत से तुम देवता बनते हो। तुम क्या बन जाते हो? देवता बनते हो। बाप खुद कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब तुम भ्रष्ट मत पर पतित बन जाते, भ्रष्ट मत पर पतित बन जाते हो। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझाना है। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने बाप आते हैं। बनाने के लिए कौन आते हैं? बाप आते हैं। सतयुग में मनुष्य ही रहते हैं परंतु दैवी गुण वाले, परंतु क्या होते हैं वो? दैवी गुण वाले। अभी कलयुग में हैं सभी आसुरी गुण वाले। कलयुग में सारे कौन है? आसुरी गुण वाले हैं। सारी मनुष्य सृष्टि है, सारी मनुष्य सृष्टि, परंतु ये है ईश्वरीय बुद्धि और वो है आसुरी बुद्धि। अब हम हैं ईश्वरीय बुद्धि, बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं, और वो है सब आसुरी बुद्धि, क्योंकि वो रावण की मत पर चलते हैं। यहाँ है ज्ञान और वहां है भक्ति, यहाँ है ज्ञान और वहां है भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान और भक्ति क्या है? अलग अलग है। भक्ति के पुस्तक कितने ढेर के ढेर हैं, कितने ढेर के ढेर हैं। ज्ञान का पुस्तक एक है, एक ज्ञान सागर की पुस्तक एक ही होना चाहिए ना। ज्ञान सागर एक है तो उसका पुस्तक भी एक होना चाहिए ना। जो भी धर्म स्थापना करते हैं उनका पुस्तक भी एक ही होता है, जिसको रिलीजियस बुक कहा जाता है, जैसे बाइबल हो गया, कुरान हो गया, इसी प्रकार से। परंतु हमारी तो ढेर सारी किताबें है ना। पहली पहली रिलीजियस बुक है, सबसे पहली रिलीजियस बुक है कौन सी? गीता, जो शिव बाबा सुनाते हैं वो गीता। ये दुनिया वाली गीता नहीं, ये तो सबसे लास्ट में लिखी गई है। पहले चार वेद लिखे गए, महाभारत लिखी गई, उसका एक हिस्सा है ये। हाँ, तो पहला पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है ना। पहला पहला धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म, और सारे धर्म उससे निकलते हैं। क्या ये हमें समझ में आता है कि सारे धर्म उससे निकलते हैं? कैसे निकलते हैं?
आदि सतयुग में आदि देवी देवता धर्म था, लास्ट में फिर जाके द्वापर में आए। द्वापर में आने के बाद?
नहीं भाई जी, नहीं। आपको कैसा लग रहा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था? आदि सनेति सनातन देवी देवता धर्म कब था? हाँ जी, कौन से सतयुग में? कौन से सतयुग में?
सतयुग दो ही थे, और कौन से सतयुग?
सतयुग दो होते हैं भाई,
ये संगम को भी।
हाँ, देखिए आदि सनातन देवी देवता धर्म संगम पर स्थापन किया। सतयुग में तो उस धर्म की प्रारब्ध गई।
संगम को अब कोई सतयुग,
संगम पर तो सतयुग होता है ना,
उसे सेमी सतयुग कहते हैं।
क्यों सेमी सतयुग कहेंगे?
और दो हो गए सतयुग तो फिर?
सतयुग दो हो गए, एक संगम वाला सतयुग विनाश से पहले वाला सतयुग, और एक हो गया विनाश के बाद वाला सतयुग। ये बात में बहुत अच्छी तरह बुद्धि में समझाना है। संगम, हाँ जी, बाबा खैर बदलते रहते हैं वाला संगम का जो है ना, संगम पर सतयुग है ना। सतयुग जिस दिन हम बाबा के बच्चे बने उस दिन से सतयुग शुरू हो गया। हम बाबा की गोद में बैठे, सतयुग शुरू हो गया। वो सतयुग में है, ठीक है, उनके लिए सत्ययुग है। और जो जितना ज्यादा चल रहे हैं उतना ज्यादा सत्ययुग के मालिक है, ठीक है क्या नहीं। तो हमें समझ में आ रहा है कि सत्ययुग जो संगम का सत्ययुग है, इसमें ही बाबा आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, और इसी समय ही संगम पर ही और सभी धर्मों का भी बीज बोते हैं। बीज बोते हैं ना, इसी समय बोया जाता है ना, तो यहां से उसका जन्म होता है। उन धर्मों का बीज यहां बोया जाता है, फूटते जाकर के वहां है। परंतु जब सत्युग शुरू हो गया, जब हम सारी आत्माएं परम धाम चली गई, तब कोई धर्म स्थापन नहीं होता। और तब तो जो धर्म था, जो उन्होंने धारणाएं अपने जीवन में बना रखी थी, उन धारणाओं पर वो चलते हैं बस। परंतु जब इब्राहिम आया, इब्राहिम आया, इस समय वो जो ज्ञान का बीज बो के गया था अपने में, उसी के आधार पर उसने आकर इस्लाम धर्म की स्थापना की। क्राइस्ट आया, वो इस समय परमात्म ज्ञान से जो धारणा करके गया, उसी आधार पर उसने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। शंकराचार्य ने, महात्मा बुद्ध ने, महावीर ने, जो भी जिन्होंने भी जितने भी धर्म पिताए हैं, वो सारे के सारे इसी समय ज्ञान की धारणा करके जाते हैं। इस ज्ञान की
वहाँ पे तो बात है नहीं, हमारे बाबा के जो बुद्ध कर रहे हैं, जो और वापस में जो आए हैं शंकराचार्य है।
भाई समझिए इस बात को कि उनको क्यों नहीं है, उनको कहाँ चला गया। उनको जो है ना, इस समय ही वो धारण करके गए, और उसके बाद उन्होंने इस ज्ञान को समझना अपनी रीति से है।
अब शंकराचार्य आए, बाबा तो शंकराचार्य संन्यास धर्म का तो कहते नहीं, संन्यास धर्म के बारे में।
भाई
तो
जी समझिए ना, क्योंकि आप वेट नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि क्राइस्ट आएगा, मुरली यही सुनेगा, बाबा ने मुरली में क्रिश्चियन धर्म के लिए भी बातें बताई हैं, और वो अपने हिसाब से इस मुरली की व्याख्या करेगा, हमारे हिसाब से नहीं करेगा, बाबा के हिसाब से नहीं करेगा, क्या नहीं। इसी प्रकार इब्राहिम अपनी मत से, हाँ अपनी बातें समझ में आएंगी। मतलब एक बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है, सारे संसार की हर आत्मा यूनिक है, हर आत्मा यूनिक है। इस समय हम क्लास में जितने भी जुड़े हुए हैं, या बाद में भी जो मुरली सुनेंगे, इसी मुरली को सुनते हुए, इसी मुरली को समझते हुए, हर एक अपने पार्ट के अनुसार इस ज्ञान में से चुनेगा। बाकी बातें इसके लिए है ही नहीं। आपके लिए जो बात है वो आप इसमें से लेंगे, उनके लिए जो बात है वो ये लेंगे, मेरे में जो बात है मैं लूंगा, चाहे मैं पढ़ रहा हूं चाहे मैं सुन रहा हूं। संसार की हर आत्मा ने अपने रोल के मुताबिक जो लेना है वो इसमें से ले लेगा। ये तो खजाना, ये तो सागर है। हाँ जो भी, मतलब तो हमें समझ में आ रहा है, मतलब कहने का मतलब यह है कि जितनी भी है अपने मतलब का लेंगे। इसी प्रकार क्राइस्ट भी इस मुरली को पढ़ेगा, वो अपने मतलब की बात समझेगा, बाकी बातें उसके लिए है ही नहीं। शंकराचार्य अपने मतलब की बात समझेगा, उसके लिए बाकी बातें है ही नहीं। मुरली यही है, मुरली यही है, परंतु हर एक आत्मा ने इसमें से सुनना या समझना वही है जो उसके मतलब का है। जो उसके मतलब का नहीं है वो समझेगा ही नहीं। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है। तो इसीलिए बाबा इसी समय संगम युग के सतयुग में सारे संसार के धर्मों का बीज बोते हैं। सारी आत्माएं इस समय परमात्मा से पढ़ती हैं। कोई भी आत्मा ये नहीं रह सकती कि जो परमात्मा से ना पढ़े, परंतु परमात्मा से पढ़कर हर एक ने उतना समझना है जितना उसने अपने आप को सुधारना है। अब समझ में आया। तो शाखाएं कहां जन्म लेती हैं? यहीं पर ही, उनका बीज यही है। और आधार मूर्त हम आत्माएं हैं जो आदि में आए हैं, उन्हीं के द्वारा उन तक पालना जानी है, उन तक पालना जानी है। जैसे हम ये वीडियो बना दिया, अब ये पूरे वर्ल्ड में जाएगी, पूरे वर्ल्ड में जाएगी, और इस वीडियो को वो आत्मा समझेगा, उतना समझेगा जितना उसने समझना है। हर एक अपने तरीके से वीडियो को सुनेगा, अपने तरीके से समझेगा। और वहां पर जो हमारी बहनें गई हुई हैं, वो वहां समझा रहे हैं, उनकी बातों को वो अपने हिसाब से समझेंगे। हर एक आत्मा यूनिक है, एकदम यूनिक है। तो यज्ञ के अंदर ये बड़ा वंडरफुल पार्ट है, इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना है कि इस समय सारे विश्व की आत्माओं को परमात्मा का संदेश मिलना है, और हर आत्मा ने अपने हिसाब से, तो सारे जितने भी धर्म है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म से इस प्रकार से निकलते हैं। क्योंकि सतयुग जो दुनिया में हमारे हमारे जो सब दिमाग में बैठा हुआ था कि सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर इब्राहिम ने आकर इस्लाम धर्म की स्थापना की। अब इब्राहिम ने आकर इस्लाम धर्म कहां से लाया? वो उसने अपने आप स्थापन तो नहीं कर दिया ना, उसके पास अपने पास तो कुछ था ही नहीं। वो अब परमात्मा के ज्ञान को जिस हिसाब से समझ के गया, उस हिसाब से आके उसने करना, क्योंकि उसके रोल में लिखा हुआ है। वो हर कल्प वही रोल आके बजाएगा, रोल चेंज नहीं कर सकता। पहला पहला, हाँ जी,
इस समय सभी धर्म पिता अपने अपने हिसाब से पढ़ाई करेंगे।
हाँ, पर हर एक अपने अपने हिसाब से पढ़ाई करेंगे। पहला पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ना कि हिंदू धर्म, ना कि हिंदू धर्म। हिंदू धर्म तो अब आया, आजाद हुआ भारत, तो महात्मा गांधी ने ये तीन नाम दिए, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये तीन नाम महात्मा गांधी ने रख दिए। उससे पहले हमें हिंदू मतलब एक नफरत की दृष्टि से मुसलमानों ने दिया, मुगलों ने दिया कि तुम हिंदू हो, नास्तिक हो, और हम मुसलमान हैं, हम आस्तिक हैं। काफिर हिंदू एक ही बात है, काफिर शब्द अलग अलग हैं, पर तो इनका मतलब एक ही है,
काफिर हम के लिए।
हाँ,
क्रिश्चियन भी काफिर
है। बिल्कुल बिल्कुल,
पार्टिकुलर हम नहीं है, सारे काफिर हैं।
क्यों कहते हैं
तो
काफिर
राम को नहीं
समझ? हाँ वही,
उसको नहीं मानते हो, बाकी सब काफिर।
जैसे हम कहते हैं हमारी मूर्तियों की ये पूजा नहीं करते हैं, ये नास्तिक है, ऐसी वो भी यही कहते हैं, ये हमारी कुरान को नहीं मानते, ये काफिर हैं, ये हिंदू हैं, ये नास्तिक है। मतलब सिंपल सा है, मतलब वो अपनी भाषा में कह रहे हैं, हम अपनी भाषा में कह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में हमें नास्तिक कहा, और हमें नहीं समझ में आया कि वो हमें क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि आया तो आप मुसलमान बन जाओ, ये कुरान को मान लो, और यदि आप कुरान को नहीं मानते हो तो आप हिंदू हो, काफिर हो, तो आपको जजिया टैक्स देना होगा। हमने कहा हम हिंदू, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, हम आपको टैक्स नहीं देंगे, हम अपनी गर्दन कटा देंगे, पर तो हम मुसलमान नहीं बनेंगे। मतलब कहने का यह है कि ये हमारी धारणा, ये हमारा गर्व था, तो हमने गर्व से अपने आप को हिंदू कहलाना पसंद किया, पर तो हम मुसलमान नहीं बने। जबकि उससे पहले हमारे लिए हिंदू शब्द नहीं होता था, उन्होंने हमें अपनी मतलब अपने धर्म से हीन कर दिया। हिंदू का मतलब ये आ गया कि हम अपने धर्म से गिर गए, या हम अपने धर्म को नहीं मानते। तो ये हिंदू शब्द हमें मुगलों ने दिया। तो हिंदू बाबा कहते कि हिंदू धर्म स्थापन नहीं किया था मैंने, तो क्या किया था, आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया। मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ, गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया, जो दुनिया वाली गीता है वो ज्ञान किसने दिया, श्री कृष्ण ने दिया। अच्छा, कब दिया? कहते हैं परंपरा से, भाई उसने आकर के द्वापर में गीता का ज्ञान दिया तुम्हारी कहानी के हिसाब से परंपरा से दिया तो फिर कैसे हुआ? कोई शास्त्र में शिव भगवानों वास्तव है ही नहीं, किसी भी शास्त्र में शिव भगवानों वास्तव है ही नहीं। तुम अभी समझते हो इस गीता ज्ञान द्वारा ही मनुष्य से देवता बने हैं, जो बाप अभी हमें दे रहे हैं, इसको ही भारत का प्राचीन राजयुग कहा जाता है। जिस गीता में ही काम महाशत्रु लिखा हुआ है, जिस गीता में ही क्या लिखा हुआ है, काम महाशत्रु लिखा हुआ है। इस शत्रु ने ही तुम्हें हार खिलाई है बाप, इस पर ही जीत पहना कर जगत जीत विश्व का मालिक बनाते हैं। बेहद का बाप बैठ इन द्वारा तुमको पढ़ाते हैं, वे है सभी आत्माओं का बाप। ये फिर है सभी मनुष्य आत्माओं का बेहद का बाप। ये क्या है? ये फिर है सभी मनुष्य आत्माओं का बेहद का बाप। नाम ही है प्रजा पिता ब्रह्मा, नाम ही है प्रजा पिता ब्रह्मा। तुम किससे पूछ सकते हो कि ब्रह्मा के बाप का नाम क्या है? किससे पूछ सकते हो कि ब्रह्मा के बाप का नाम क्या है? तो मूंछ पड़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों का बाप कोई होगा ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों का कोई बाप तो होगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में देवताएं हैं। ब्रह्मा विष्णु सूक्ष्म वतन में क्या हैं? देवताएं हैं। उनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते हैं शिव बाबा के जो बच्चे आत्माएं हैं उन्होंने शरीर धारण किया है। उन्होंने क्या किया है? शरीर धारण किया है। वे तो सदैव निराकार परम पिता परम आत्मा है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है परम पिता, कितनी सहज बात है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है परम पिता, कितनी सहज बात है। इनको कहा जाता है अलफ और बे की पढ़ाई। अलफ माना अल्लाह और बे माना बादशाह। इनकी पढ़ाई को कहा जाता है अलफ और बे की पढ़ाई। कौन पढ़ाते हैं? गीता का ज्ञान किसने दिया? श्री कृष्ण को तो भगवान नहीं कहा जाता है। यदि आप श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया है तो श्री कृष्ण को तो भगवान कहा नहीं जाता। वे तो देहधारी है, ताजधारी है, शिव तो है निराकार। और शिव क्या है? निराकार है। उन पर तो कोई ताज आदि है नहीं, वही ज्ञान का सागर है। बाप ही बीज रूप चैतन्य है। तुम भी चैतन्य हो, तुम भी चैतन्य हो। सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। भाव तुम माली नहीं हो, भाव तुम माली नहीं हो, भाव तुम माली नहीं हो, परंतु समझ सकते हो कि बीज कैसे डालते हैं। बीज पहले बोया जाता है, कोई बीज जल्दी फूटता है, कोई बीज देर से फूटता है, है ना? बीज तो अपने हिसाब से अपने टाइम पर ही फूटेगा ना। वे है जड़, ये है चैतन्य। वो बीज है जड़ और ये है चैतन्य। आत्मा को चैतन्य कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा में ही ज्ञान है और किसी आत्मा में ज्ञान हो नहीं सकता। तो बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। ये है, ये चैतन्य क्रिएशन है, ये चैतन्य क्रिएशन है। वे सभी हैं जड़ बीज। ऐसे नहीं कि जड़ बीज में कोई ज्ञान है, ऐसे नहीं है कि जड़ बीज में कोई ज्ञान है। ये तो है चैतन्य बीज रूप, उनमें सारे सृष्टि की नॉलेज है। झाड़ की उत्पत्ति, पालना, विनाश का सारा ज्ञान उनमें है। फिर नया झाड़ कैसे खड़ा होता है, वे है गुप्त, वे है गुप्त। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है। ज्ञान भी कैसे मिलता है? गुप्त मिलता है। बाप भी गुप्त आए हैं। तुम जानते हो ये कलम लग रहा है, ये कलम लग रहा है। अभी तो सभी पतित बन गए। अच्छा, बीज से पहला पहला पत्ता निकला, वे कौन था? बीज से पहला पहला पत्ता निकला वो कौन था? वो कह देते हैं श्री कृष्ण। सत्युग का पहला पत्ता तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे। कैसे दिखाया? फिर समुद्र पर पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आ गया। वो पता नहीं कितना बड़ा पीपल का पत्ता होगा, कितना वजन भी उठा सकता होगा, कृष्ण का कोई भार भी होगा। वो भी समुद्र में डूबता नहीं है। हाँ, और फिर कहाँ गया? कहाँ से आया, कहाँ गया, कुछ भी नहीं पता। क्यों? मतलब ये सारी बातें क्यों ऐसे आधी अधूरी पहुंची? क्योंकि इस समय हमने झाड़ के चित्र के अंदर पत्ता अलग दिखाया है और विनाश से पहले दिखाया है और उसके बाद विनाश हो जाता है और उसके बाद वो नारायण बन के आता है। तो कृष्ण कहां से पता लगेगा, कहां से आया, कहां गया, कैसे पता लगे? क्योंकि ये बात तो किसी न किसी के दिमाग में रही ना, और उसने लिखा कि सृष्टि के आदि में तो कृष्ण आता है और सत्युग शुरू होता है लक्ष्मी नारायण से। सत्युग की आदि तो कृष्ण से होती नहीं, ठीक है ना? इस समय की आधी मतलब विस्मृति वाली जो बातें, स्मृति विस्मृति वाली जो बात थी, वो किसी के दिमाग में रही होगी और उसने उसको लिख दिया होगा। हाँ, वैसे लिखा। तो कहने का मतलब यह है कि श्री कृष्ण जन्मा तो संगम पर ना, परंतु सतयुग में तो नारायण आया, कृष्ण तो आया ही नहीं सतयुग। हाँ, सतयुग की आदि में तो नारायण से शुरू हुआ। वेरी फर्स्ट डे शुरू होता है तो लक्ष्मी नारायण जी राज गद्दी पर बैठते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं और वन 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 शुरू हो जाता है। ये बातें मतलब ऐसे, क्योंकि सारे बीज जो है ना, बाबा अभी बीज बो के जाता है, जो कुछ आगे फिर उसके अंदर अपनी बुद्धि से जैसा समझ में आता है वो लिख देते हैं। लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे नया पत्ता, लक्ष्मी नारायण को नया पत्ता तो नहीं कहेंगे ना। वो कम से कम 25-30 साल जितना भी उम्र का बड़ा होगा वो होगा उतना, 30-35 साल, कहीं 20-25 साल लिखा हुआ है। नया पत्ता छोटा होता है, तो श्री कृष्ण छोटा पत्ता है, पहला पहला पत्ता है श्री कृष्ण, और दूसरा पत्ता भी हमें पता है राधा, क्योंकि दो पत्ते निकलते हैं राधा और कृष्ण, पीछे बड़ा होता है। तो इस बीज की कितनी महिमा है, ये तो चैतन्य है ना। अच्छा, फिर सबसे और क्या, बाबा भी ना बातें अजीब सी बताते हैं, जो हजम करना सबके सबके बस की बात नहीं होती। कहता हाँ, कहता अरे गीता माता है मतलब किसी की माँ भी क्या बना दी, गीता बना दी, मतलब कोई हजम कर सके हाँ, गीता ज्ञान से रचना हुई, बाकी कोई मेरे से कोई बीज में से पता नहीं निकल आया। मतलब दिखाया, मतलब बातें बड़ी अजीब सी है ना, जो आसानी से कोई पचा भी ना सके। हाँ, बीच में जानकारी होती है, परंतु बाबा कहते हैं मेरा पत्ता है, दिखा दिया चित्र में बनाने वाले ने कि शिव बाबा से दो पत्ते निकल रहे हैं, बाकी शिव बाबा जो दिखाई नहीं देता और उससे दो आत्माएं निकलेगी कैसे हो सकता है? बनी, उनकी रचना हुई, ज्ञान के आधार पर हुई। मतलब ये जब हम बहुत ध्यान से समझें तब हमें कोई बात समझ में आती है, नहीं तो भाई बहन चित्र को देख करके कह देंगे परमात्मा से दो आत्माएं निकली, सिर्फ शरीर बन गया चित्र के हिसाब से, क्योंकि चित्र हमें भ्रमित कर देता है। परंतु चित्र को देखते हुए भी हमने बुद्धि से बहुत अच्छी तरह सोचना है, समझना है, तब हम समझ सकते हैं कि वास्तव में गीता का ज्ञान जो सुनाया वो कृष्ण की आत्मा ने 100% अपने जीवन पर धारण किया, तभी वो सतयुग का कृष्ण बना, प्रथम मतलब राजकुमार बना।
हाँ जी, ये जो लक्ष्मी नारायण है इनके मैं भी पापा को किसी को उस टाइम पता नहीं होगा तो बोलेंगे कि आत्मा से परमात्मा से ही पैदा हुए हैं, है ना?
नहीं भाई,
उनको पता थोड़ी होगा लक्ष्मी नारायण को मम्मी पापा का तो शरीर धारण करेंगे।
लक्ष्मी नारायण के मम्मी पापा लक्ष्मी नारायण को नहीं पता मेरे मम्मी पापा कौन है, परंतु कृष्ण और राधा, राधा और कृष्ण अपने मम्मी पापा के पास है ना। अब उनको उनके माता पिता से शरीर मिला है ना, भल वो शरीर निर्विकारी है, भल शरीर वो निर्विकारी है, परंतु उन्हें ये तो नहीं मालूम कि ये कृष्ण जो है ना सत्य जो है ना दुनिया वाले जो भगवान समझते वो है, उनको ये नहीं मालूम, उनके लिए तो वो बच्चा है ठीक है, और उनके लिए वो माता पिता है बस ठीक है, और उनको उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि हमें कैसे जन्म दिया, हमें पवित्रता से जन्म दिया है, ये तो ब्रह्मा कुमारियों में कहा जाता है पवित्रता से जन्म लेंगे, मतलब उनको जन्म लेने के बाद ये भी नहीं पता कि हमारा कैसे जन्म हुआ, वो अपने नए जीवन के अंदर अपना एंजॉय कर रहे हैं, जबकि आप ये समझ लीजिए कि वही आत्मा ब्रह्मा है और वही आत्मा सूक्ष्म वतन में भी पार्ट बजा रहा है, सूक्ष्म वतन में उसे पता है कि मैंने कृष्ण बनना है, पर तो उसे ये नहीं मालूम कि मैं बन गया हूं, मतलब ये भी बड़ी वंडरफुल बात है, मतलब उसे ये क्लियर स्पष्ट नहीं है कि मैंने कृष्ण के रूप में जन्म ले लिया है। अभी फिर क्यों सूक्ष्म वतन में है? आप ये देखिए कि वो है ना लीडर है, वो लीडर है, वो ब्रह्मा है, साथ साथ शंकर भी है और साथ साथ विष्णु भी है, ठीक है नहीं? तो ये उसने तीनों रोल प्ले करने हैं, तो ऊपर हाँ जैसे दादी अपने शरीर को छोड़कर ऊपर आती है, दादी ने ये राज खोला, मतलब ये दादी ने दादी के द्वारा बाबा ने ये राज खुलवाया या खोला कि मैं अपने शरीर को बाथरूम में बंद करके आ जाती हूँ या मैं सो जाती हूँ, माँ बाप समझते हैं कि मैं सोया पड़ा हूँ क्योंकि लड़के के रूप में जन्म लिया है और मैं यहाँ बाबा के पास ऊपर आ जाती हूँ, और बाकी सभी भी उसने ये बात भी स्पष्ट किया कि बाकी सभी भी जिन्होंने नीचे जन्म ले रखा है हम नीचे मिलकर काम करते हैं, परंतु हम एक दूसरे को नहीं जानते कि हम ब्रह्मा कुमारी में कैसे हैं, और जब हम ऊपर आते हैं तो ऊपर हम जब ब्रह्मा बाबा से मिलने के लिए आते हैं तो हम इस ब्रह्मा कुमारीज वाली बॉडी में आते हैं, आकार में आते हैं, और जो बाबा हमें डायरेक्शन देते हैं हम सारे डायरेक्शन लेकर नीचे फिर मिलकर काम करते हैं, फिर भी हम एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है नहीं? तो कृष्ण भी नहीं जानता नीचे, जानता भी होगा तो पक्का है बताता नहीं।
जो ऊपर मिलते हैं तो वो इस शरीर की याद आती है या पिछले शरीर?
ब्रह्मा कुमारी में जैसे थे दादी, दादी जैसे थी वैसे आती है, नीचे तो वो लड़का है पर तो ऊपर जब आती है तो दादी के रूप में आती है, बाकी भी सब जैसे जगदीश भाई हो गया, जो जो दूसरे भाई गए हुए हैं, मम्मा हो गई, ठीक है, वो सारे ऊपर आते तो मम्मा मम्मा के रूप में आती है,
तो फिर उनको याद रहता ही नहीं, तो फिर मिलने से क्या फायदा
है? डायरेक्शन तो यहाँ से लेके जाएंगे ना, क्या क्या करना है भाई, प्लानिंग तो करनी होती है ना,
और डायरेक्शन लेने जाते हैं और उनका कोई नीचे वाले शरीर से कोई लेना देना नहीं
ना, नीचे वाले शरीर से कोई मतलब नहीं।
भाई जी प्रकाशमयी दादी का जन्म हो चुका,
ओ 2007 में हो गया था, लड़के के रूप में जन्म ले लिया, उसने तो सारी कहानियां खोल दी, ठीक है भाई? दो में कृष्ण जन्म हुआ, पहला पहला पवित्र जन्म कृष्ण का होता है, उसके बाद बाकियों का जन्म होता है। तो साथ में 5 साल 6 साल छोटी है कौन है दादी। तो भल दूसरे भी निकलते हैं, धीरे धीरे उन्हों की महिमा कम होती जाती है। अभी तुम देवता बनते हो तो मूल बात है हमको देवी गुण धारण करने हैं, इन जैसा बनना है। चित्र भी हैं, ये चित्र ना होते तो बुद्धि में ज्ञान कैसे आता, बुद्धि में ज्ञान कैसे आता। ये चित्र बहुत काम में आते हैं, भक्ति मार्ग में इन चित्रों की पूजा होती है, भक्ति मार्ग में इन चित्रों की पूजा होती है, और ज्ञान मार्ग में तुमको इनों से ज्ञान मिलता है, ज्ञान मार्ग में तुमको इनों से ज्ञान मिलता है कि इन जैसा बनना है, इन जैसा बनना है। बाबा आकर जो ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान तो यही रहता है परंतु संस्कार के रूप में सत्युग त्रेता में जाता है। ज्ञान तो इस समय का है, उस समय वो ज्ञान की प्रालब्ध भोगते हैं, जितने कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं उसको, क्योंकि रास्ता तो वही है, परंतु उसमें धीरे धीरे गिरावट आती जाएगी, धीरे धीरे अब तो पीक पर पहुंच जाएंगे। बाबा के पास आकर ज्ञान लेकर हम पीक पर पहुंच जाएंगे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते जाएंगे। भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं समझेंगे कि हमको ऐसा बनना है। ज्ञान मार्ग में जब हमें ज्ञान मिलता है तो हमारी बुद्धि में होता है कि हमको लक्ष्मी नारायण बनना है, परंतु उसके बाद प्रारब्ध में ये बातें नहीं होंगी और भक्ति में भी नहीं होंगी। भक्ति मार्ग में मंदिर आदि कितने बनवाते हैं, सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे, जरूर शिव बाबा के ही होंगे, फिर उनके बाद क्रिएशन के होंगे। पहली क्रिएशन ये लक्ष्मी नारायण है, कृष्ण नहीं कहा, पहली क्रिएशन ये लक्ष्मी नारायण है, तो शिव के बाद इनकी पूजा जास्ती होती है होगी, जबकि वास्तव में यहाँ बाबा ने कह दिया है वैसे ज्यादा पूजा कृष्ण की होती है, कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण से भी ज्यादा पवित्र है। हाँ, और उसके बाद बाबा ने मुरली में पहले कहा हुआ है कि कृष्ण की पूजा नारायण से भी ज्यादा होती है, और यदि हम अपने सीढ़ी वाले चित्र को देखेंगे तो सीढ़ी वाले चित्र में भी कृष्ण को पहले, फिर जो है ना लक्ष्मी नारायण को, फिर राम सीता को दिखाया है, और जहां से द्वापर शुरू होता है, द्वापर में सबसे पहले शिवलिंग, शिवलिंग के बाद कृष्ण, कृष्ण के बाद लक्ष्मीनारायण, लक्ष्मीनारायण के बाद राम सीता, फिर वेद है, फिर ये क्या बोलते हैं हनुमान गणेश, ये सारे दिखा दिए। हाँ जी नीलम, क्या पूछना चाह रहे हैं?
ईसाई धर्म है ना, इस द्वापर से ज्यादा वो किसको मानते हैं?
ईसाई धर्म है, एक इस्लाम धर्म है, इन दोनों में अंतर है। इस्लाम धर्म इब्राहिम ने स्थापन किया था, ईसाई धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया था, और मुस्लिम धर्म मोहम्मद साहब ने स्थापित किया था।
ईसाई है ना, इस दरापर मतलब सारी पृथ्वी पर ईसाई धर्म है, वो सबसे ज्यादा
है। सबसे ज्यादा तो मुसलमान है, इस्लाम धर्म, इस्लाम मतलब देखो इब्राहिम से ही ईसाई निकले, इब्राहिम से ही मुसलमान निकले, इब्राहिम से ही यहूदी निकले, इब्राहिम से ही यहूदी अपना जेहोवा वाले नुवा वाले जितने भी वो हैं उनका हैद इब्राहिम है।
इस्लाम के बाद बुद्ध भी तो आया, दूसरे नंबर पर बुद्ध आया ना।
बुद्ध जो धर्म, भाई बात यहाँ हो रही है कि जो हमारे यूरोपियन देश हैं वो सारे के सारे अपने हैद इब्राहिम को मानते हैं,
उनका किस रूप में पूजा करते हैं, परमात्मा की प्रतीक्षा है ना?
वो परमात्मा किसी को भी नहीं मानते, मतलब परमात्मा लाइट को मानते हैं, ज्योति को मानते हैं, बताने का तरीका उनका थोड़ा अलग अलग है, परंतु सभी नूर भाषा अलग अलग है। हमने उसमें उस समय क्या ना, कोई नफ्स बोलता है तो कोई का बोलता है तो कोई बी वो बोलता है, ऐसे नाम उन्होंने अपनी अपनी भाषा में अलग अलग रखे हुए हैं, क्योंकि साइकी बोलता है तो क्योंकि जैसे उनको समझ में आया, अपनी लैंग्वेज उनकी अपनी है तो लैंग्वेज वाइज नाम उन्होंने अलग अलग रखे हैं, परंतु मानते हैं कि वो एक ऐसी लाइट है। ये बड़ी वंडरफुल बात है कि हम उसको बना नहीं सकते, कुछ उसकी जगह रखते हैं, ज्योति जलाते हैं, परंतु कुछ नहीं रखते। जैसे आप इसमें जाएंगे अपना क्या बोलते हैं मस्जिद में, वहां कुछ नहीं मिलेगा, नूर की जगह पर कोई लाइट नहीं रखेंगे, और चर्च में जाएंगे तो वहां लाइट जला देंगे। मतलब उन्होंने स्थूल रूप से लाइट जला दी। बस बाबा कहते हैं ना तो मैं मोमबत्ती वाली लाइट हूँ, मैं ना तुम्हारी दिए वाली लाइट हूँ। हाँ वो नूर वो कहते हैं, पर तो वो कहते हैं उस नूर की हम कॉपी नहीं कर सकते। वंडरफुल लाइन है ना, मतलब ये लाइन देखिए, जो लाइन में ताकत है वो ताकत को तो हमें समझना होगा कि इब्राहिम ने जा कहा कि हम उस नूर की कॉपी नहीं कर सकते। वो नूर है पर तो हम उसको कॉपी नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते। तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि हाँ ये बात वाक्य में ठीक है। बाबा ने भी यही कहा है कि ये जो तुम जितने देख रहे हो ये मैं नहीं हूँ। हाँ हाँ नहीं कर सकते, बस ये वाली ज्योति तो हम नहीं है ना। हाँ जी क्रिश्चियन और ईसाई एक है,
एक है ना।
हाँ जी
सर, परसों तो आपने दो बता रहे थे, दो बता रहे थे उसमें इसको अपना ये कहते हैं ये कहते हैं।
देखिए क्रिश्चियन धर्म के अंदर फिर आगे उसकी ब्रांचेस बन जाती है ना।
ब्रांचेस तो बनते हैं भाई,
तो ब्रांचेस बनती है तो उनके मत चेंज होते हैं। यदि मैंने वही बता रहा हूँ भाई जी, इस्लाम धर्म अलग है,
इस्लाम अलग है, उसके बाद
इस्लाम अलग है, ईसाई अलग है, और उसके बाद क्रिश्चियन धर्म ईसाई का ही रूप है, परंतु उसके अंदर फिर दो दो मेन शाखें हैं, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। इसी प्रकार से उसके आगे और ब्रांचेस हैं, वो हम ज्यादा उसी कारण में रुका हुआ हूँ कि उस विषय को मैं चलाऊंगा किसी दिन। और उसके बाद मतलब हमारे पास आ जाता है इधर मुस्लिम धर्म अलग है, ठीक है। तो मुसलमान
अब इस्लाम का मुस्लिम धर्म है संख्या तो
हाँ जी
उनकी याद है, जो मोहम्मद ने मुस्लिम मोहम्मद ने अलग धर्म स्थापित कर दिया इस्लाम के बाद, तो अब संख्या उनकी है ना, मोहम्मद वाले की याद है।
हाँ मुस्लिम की याद है। अब मुस्लिम्स भी भाई जी बात वही है ना कि मुस्लिम्स भी तो इतनी शिया सुन्नी नहीं है भैया, बहुत सारे हैं। बस अब आप उसको इतना छोड़ करके आगे चले, नहीं तो हम यहाँ उलझ जाएंगे, क्योंकि बहुत ब्रांचेज है। जैसे हमारे सनातन धर्म के अंदर गिनती नहीं कर सकते हम एक दूसरे से कितने भिन्न हैं, ऐसे उनके अंदर भी उसी प्रकार से भिन्नता है। आप यदि झाड़ के चित्र को ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कितने सिर लटकाए गए हैं, मोहम्मद इस्लाम का भी क्रिश्चियंस पर भी सबके ऊपर कितने सिर लटकाए गए हैं, उसके बाद पत्ते लगाकर छोड़ दिया कि भी इसकी इतनी ब्रांचेस हैं, गिनती नहीं कर सकते, सिर्फ हम समझ सकते हैं। तो ऐसे ही सनातन धर्म है, ऐसे ही सभी धर्म है, उनकी ब्रांचेस बहुत हैं, और फिर हर ब्रांच वाला थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो अंतर करता ही करता है। तो शिव के बाद इनकी पूजा जाती होगी, माताएं जो ज्ञान देती हैं उनकी पूजा नहीं, वे तो पढ़ती हैं, तुम्हारी पूजा अभी नहीं होती क्योंकि तुम अभी पढ़ रहे हो। तो माताएं जो सेंट्रल इंचार्ज हैं वो ज्ञान दे रही हैं, उनकी पूजा नहीं होती, और जो तुम पढ़ रहे हो तुम सब स्टूडेंट हैं हम सारे के सारे। जब तुम पढ़कर अनपढ़ बनेंगे, ये कब होगा, पढ़कर अनपढ़ बनेंगे फिर पूजा होगी।
जब सच्ची में जाएंगे उन्हें अनपढ़ हो जाएंगे, इस चीज का पता नहीं होगा, ज्ञान
इस चीज का हमें पता नहीं होगा। तो धीरे 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 जो हमारे संस्कार बने हुए थे वो भी गिरते जाएंगे, और फिर द्वापर में आकर पूजा होगी, क्योंकि सत्युग त्रेता में तो पूजा होती नहीं, सत्युग त्रेता में कोई मंदिर नहीं होता,
वही स्वर्ण पर्व वाले सत्युग।
हाँ, मतलब उसके बाद धीरे धीरे हम पतित हो जाएंगे, जब हमारे जीवन में दुख आएगा तो फिर हम पूजा करना शुरू करेंगे। अभी तुम देवी देवता बनते हो, सत्युग में बाप थोड़े ही पढ़ाने आएगा, वहां ऐसी पढ़ाई थोड़े ही होगी। ये पढ़ाई पतितों को पावन बनाने की है। तुम जानते हो हमको जो ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी, फिर हमारी भी पूजा नंबर वार होगी, फिर गिरते गिरते पांच तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। पांच तत्वों की पूजा माना पतित शरीर की पूजा। ये बुद्धि में ज्ञान है कि इन लक्ष्मी नारायण का सारे सृष्टि पर राज्य था, इन देवी देवताओं ने राज्य कैसे और कब पाया, कैसे और कब पाया, ये किसको पता नहीं है। लाखों वर्ष कह देते हैं, लाखों वर्ष की बात तो किसकी बुद्धि में बैठ ना सके, इसलिए कह देते ये परंपरा से चला आता है, कह देते हैं परंपरा से ज्ञान चला आता है। अब तुम जानते हो देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, जो भारत में हैं वो अपने को हिंदू कह देते हैं क्योंकि पतित हैं। वे अपने को हिंदू कह देते हैं क्योंकि पतित होने कारण देवी देवता कहना शोभता नहीं। परंतु मनुष्यों में ज्ञान कहाँ, देवी देवताओं से भी ऊंच टाइटल अपने पर रखवाते हैं, पावन देवी देवताओं की पूजा करते माथा झुकाते हैं, परंतु अपने को पतित समझते हैं, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं। हम जाके माथा टेकते बताओ, अपने आप को ये थोड़ा समझ, कहते हैं, कह भी देते हैं,
और ये पता नहीं हम कह क्या रहे।
हाँ, मैं मूरख कल कामी, समझते नहीं है। भारत में खास कन्याओं को कितना नमन करते हैं, कुमारों को इतना नहीं करते, मेल से ज्यादा फीमेल को नमन करते हैं, क्योंकि इस समय ज्ञान अमृत पहले इन माताओं को मिलता है, तो बाप इनमें प्रवेश करते हैं। ये भी समझ जाते हैं बाप किसमें प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा में, अगर बाप मैं प्रवेश इनमें करता हूं, और ज्ञान सबसे ज्यादा पहले ज्ञान कलश माताओं के सिर पर रखता हूं, इसलिए उनकी पूजा होती है। ये भी समझते हो ये ब्रह्मा बाबा ज्ञान की बड़ी नदी है, ये ब्रह्मा बाबा ज्ञान की बड़ी नदी है, ज्ञान नदी भी है, ये बड़ी नदी भी है, ब्रह्मपुत्रा नदी भी है और ज्ञान की नदी भी है। और जहां ज्ञान ब्रह्मपुत्रा सागर में मिलती है उस जगह को क्या कहते हैं, उसका नाम बाबा ने बताया डायमंड हार्बर, अंग्रेजों ने रखा उसका नाम डायमंड हार्बर, मतलब कलकत्ता में जहां ब्रह्मपुत्रा नदी मिलती है उस जगह का नाम डायमंड हार्बर रखा। बाबा ने मुरली में इसका जिक्र किया कि देखो उनको पता नहीं,
वो क्या कहते हैं खाड़ी में मिलते हैं ना, बंगाल की खाड़ी में।
हाँ, जब गिरेगी कलकत्ता के पास जहां से समुद्र में जाके वो गिरेगी, उस जगह को कहते हैं डायमंड हार्बर। तो बाबा कहते देखो, मुरली में स्पष्ट किया बाबा ने कि नाम उन्होंने रखा है डायमंड हार्बर, पता नहीं है उनको कि क्यों नाम रखा गया, क्या नहीं। जबकि जब शिव बाबा ज्ञान सागर ज्ञान नदी ब्रह्मपुत्रा से मिलते हैं तो डायमंड युग होता है, सब डायमंड बनते हैं। वहां जो भी आके ज्ञान सागर में डुबकी लगाते हैं वो डायमंड बनते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि उस पानी से गिरने से कौन सा डायमंड बनेंगे। ये है डायमंड हार्बर जहाँ तुम सब आत्माएं आकर ज्ञान सागर से ज्ञान नदी के ज्ञान नदी और ज्ञान सागर के संगम पर आकर ज्ञान सुनते हो। ये वो टाइम है। तो डायमंड हार्बर तो ज्ञान की बड़ी नदी, ज्ञान नदी भी है फिर पुरुष भी है। ब्रह्मा नदी भी है और पुरुष भी है। ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे बड़ी है जो कलकत्ता तरफ जाकर मिलती है, मेला भी वहां ही लगता है। और जो गंगा नदी है ये बंगाल से वेस्ट बंगाल से होकर के समुद्र में जाके गिरती है, गिरती है रास्ता, मतलब जैसे हमारी गंगा जो है ये प्रयागराज से होते हुए ये फिर बांग्लादेश में घुस जाती है, फिर बांग्लादेश से होते हुए जाकर के नीचे समुद्र में मिलती है। तो जहां गंगा नदी जाकर मिलती है उसे कहा जाता है सुंदरबन में से होती हुई, ठीक है, जो डेल्टा वन बने हुए ना बंगाल में आ जाए, बांग्लादेश में आ जाते हैं वो, तो वो वहां जाकर के जहां मिलती है नीचे जाकर के, तो वहां जो है ना उसको कहते हैं गंगा सागर। तो गंगा सागर एक बार और तीरथ बार बार। तो परमात्मा आकर मिलते हैं कल्प में एक बार, इसलिए वो एक बार, बाकी तीरथ तो बार बार है ना। परमात्मा से तो हम एक बार मिलेंगे, बार बार तो मिल नहीं सकते। तो ये पता नहीं कि ये आत्माओं और परमात्मा का मेला है, वे तो पानी की नदी है जिसका नाम ब्रह्मपुत्रा रखा है, वो तो ब्रह्म का को ईश्वर कह देते हैं, इसलिए ब्रह्मपुत्रा को पावन समझते हैं। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं कहा जाता, पतित पावन गंगा को नहीं कहा जाता। यह सागर और ब्रह्मा नदी का मेल है। यहाँ मेल किसका है, कौन मिल रहे हैं, पहले ब्रह्मा नदी और ज्ञान सागर मिल रहे हैं। बाप कहते हैं ये फीमेल तो नहीं है, मैंने इसको वर्णी तो बना दिया, खुद ही कह रहे हैं ये फीमेल तो नहीं है, ठीक है कि नहीं, जिस द्वारा एडॉप्शन होती है। ये बहुत गुह्य समझने की बात है, ये बहुत गुह्य हैं और ये बहुत समझने की बातें हैं जो फिर प्राय लोप हो जानी है। ये बातें इसी समय समझ में आनी है, जिसको आनी है उसके बाद तो ये प्राय लोप, फिर जब तक मैं ना आऊं ये चैप्टर ना खोलूं तब तक किसी को ये बातें समझ में आ नहीं सकती। फिर बाद में मनुष्य इस आधार पर शास्त्र आदि बनाते हैं, जो मैं बता के जा रहा हूं जैसा जिसने समझा, जैसा वो समझ कर यहां से जाएगा वैसी बातें आकर के फिर वो बताएगा, तो वो सारे शास्त्र आदि बनाते हैं। तो पहले हाथ के लिखे हुए शास्त्र थे, क्योंकि पहले भाषा ही उनकी जैसी थी, तो उन्होंने जैसे भी लिख सकते थे लिखा, चाहे वो तार के पत्र होते थे या दीवार पर लिखते थे, या पत्थरों पर लिखते थे। तो पहले हाथ के लिखे हुए शास्त्र थे, बाद में बड़ी मोटी मोटी किताबें छपवाई, तो पहले कागज भी बहुत मोटा होता था, क्योंकि वो समझते थे हाथ से बनाते थे कागज भी, तो मशीनें तो थी नहीं, हाथ से मोटा हैंडमेड शीट आती है, ऐसे हाथ से बनी हुई शीट होती थी, लुगदी बना करके उसको फैला देना, दबा दबा करके तो प्लेन करना, जितना भी प्लेन कर सकते थे, तो उसको लाइफ लॉन्ग बनाने के लिए जितने भी अच्छे तत्वों को चीजों को जोड़ सकते होंगे वो जोड़ते थे। पहले हाथ के लिखे हुए शास्त्र थे, बाद में बड़ी मोटी मोटी किताबें छपवाई हैं। संस्कृत में श्लोक आदि भी नहीं आदि थे नहीं, संस्कृत में श्लोक हैं, उन्होंने उनका कोई व्याकरण ही नहीं है। मैंने आपसे चर्चा की है वेदों में हम कह देते हैं कि वो श्लोक है, परंतु वो श्लोक कोई नहीं है, बस उसने अपनी बात जैसे अभिव्यक्त की वैसे लिख दी, उसमें ना तो कोई ग्रामर के नियम है, बस जैसे उसने आगे पीछे जो भी लगा के बता दिया और सामने वाले ने समझ लिया, इसलिए उनको श्रुति कहा जाता है। श्रुति श्रुति मैंने बोल करके कहा गया और सुना गया, श्रुति सूक्ति नहीं, श्रुति सुनना। हाँ, वेदों का पहला नाम क्या है, श्रुति है। श्रुति माना सुनकर, मतलब सुनी सुनाई, पिता ने बच्चे को बता दी, बच्चे ने आगे बच्चे को बता दी आगे, फिर किसी ने उसको लिख दिया, अब मैंने 10 को बताया, अब 10 में से 4-5 ने लिख भी दिया, मेरा नाम तो कहीं है ही नहीं, फिर मेरा नाम तो कहीं है ही नहीं। हाँ, इसलिए वेदों की प्रतियां इतनी ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं, यानी उनको बड़ा संभाल करके रखा गया है, बहुत बड़ी धरोहर समझ करके, बड़ा उनके लिए मतलब फुल प्रूफ एटमोस्फेयर बनाकर, ताकि वो अब सुरक्षित रह सके। इसलिए उनको श्रुति कहा गया, मतलब उसमें जो बात जैसे आई एक लिख दी, दुख बने ना बने, कुछ बने ना बने, उससे कोई मतलब नहीं, उन्होंने अपनी बात कहनी थी और कह दी, इसलिए उनको श्रुति कहा गया। बाद में ये तो पाणी नहीं आया, उसी ने संस्कृत भाषा बनाई और फिर उसमें नियम से लिखना शुरू हुआ। वेद इन नियमों से पहले लिखे गए, उनमें कोई नियम नहीं है। पाणिनि ये पहला अष्टाध्यायी व्याकरण उसने लिखी, पहली संस्कृत की, और उसने अपनी भाषा का नाम संस्कृत दिया। ये तो बिल्कुल सहज बात है, मैं इन द्वारा राजयोग सिखलाता हूँ, फिर ये दुनिया ही खलास हो जाएगी, शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे, फिर भक्ति मार्ग में ये शास्त्र आदि बनेंगे। मनुष्य समझते हैं ये शास्त्र आदि परंपरा से चले आए हैं, इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, जिससे तुम सोझरे में आए हो, सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, कलयुग में सभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, ये भी ड्रामा है। बाद में है निवृत्ति मार्ग, जिसको सन्यास धर्म कहते हैं, जंगल में जाकर रहते हैं, वेद हैं हद का, वे हैं सारे हद के, जो भी बाकी धर्म है वो सब क्या है, हद का सन्यास, दुनिया में जितना भी सन्यास करते हैं वो हद का सन्यास करते हैं, रहते तो इसी पुरानी दुनिया में है, अब तुम जाते हो नई दुनिया में, तुम्हें तो बाप से ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो, इससे जाती नॉलेज होती ही नहीं, वे तो है माया की नॉलेज, जिससे विनाश होता है, जिससे क्या होता है, विनाश होता है। वो लोग मून पर चांद पर भी जाकर खोज करते हैं, तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है, ये सभी माया का पॉम्प है, ये सब क्या है, माया का पॉम्प है, बहुत शो करते हैं, अति डीपनेस में जाते हैं, बहुत गहराई से सोचते हैं कि कुछ कमाल करके दिखाएं, बहुत कमाल करने से फिर नुकसान हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, उनके ब्रेन में विनाश के ही चालाक आते हैं, क्या क्या बनाते रहते हैं, क्या क्या बनाते रहते हैं, बनाने वाले जानते हैं इससे ही विनाश होगा, ट्रायल भी करते रहते हैं, कहते हैं, कहते भी हैं, दो बिल्ले लड़े और माखन तीसरा खा ले गया, कहानी तो छोटी है परंतु खेल कितना बड़ा है, नाम इन्हों का ही बाला है, इन द्वारा ही विनाश की नूंद है, कोई तो निमित्त बनता है ना, क्रिश्चियन लोग समझते हैं पैराडाइज था, पर हम नहीं थे, पर हम नहीं थे, इस्लामी बोधि भी नहीं थे, जो भी द्वापर में आए वो थे ही नहीं स्वर्ग में, फिर भी क्रिश्चियन लोगों की समझ अच्छी है, भारतवासी कहते हैं देवी देवता धर्म लाखों वर्ष पहले था, तो बुद्धू ठहरे ना, बुद्धू ठहरे ना, बाप भारत में ही आते हैं, ले देखो ना कि अरस्तु का भी मैं पढ़ा था, अरस्तु कहता है 6000 साल का चक्र है, 6000 साल का, अरस्तु ने जो सृष्टि चक्र दिया उसको बोलते हैं पॉलिटिक्स का चक्र, राजनीति का चक्र, मैंने आपको बताया होगा, ठीक है, उसमें ये है कि पहले एक राजा होता है, बड़ा सदाचारी होता है, ठीक है, जब वो विकारी बनता है मीन्स उसमें दोष आता है तो दो के हाथ में पावर आ जाती है, पहला वो पावरफुल था, वो खराब हुआ तो पावर दो के पास आ गई, राजा के साथ एक मंत्री आ गया, थे नहीं, तो दो के पास पावर पावर आई, वो जब तक ठीक चलते रहे ठीक, वो भी फिर करप्ट हो गए। जब वो करप्ट हो गए तो सारी पावर किसके पास आ गई, प्रजा के पास, प्रजा के पास आ गई। तो उसने देखिए कि उस समय लिख दिया था जब पूरे वर्ल्ड में कहीं डेमोक्रेसी नहीं थी,
यूनान का
था ना, हाँ पहला पहला ग्रीक यूनान का, तो उसने उस समय लिख दिया नहीं, सुकरात अरस्तु का गुरु प्लेटो, प्लेटो का गुरु सुकरात, सुकरात का गुरु अफलातून, ठीक है, उपरा अफलातून, अफलातून उससे पहले जो सबसे पहला जो प्लस पर है, ठीक है, कहते हैं तू बड़ा अफलातून है, मतलब वो पता, हाँ पता नहीं था, पर तो ये यहाँ पढ़ने पर पता चला कि भी अफलातून, हाँ तू बड़ा अफलातून है। अलग सुकरात ने 60,000 कहा, सुकरात ने कहा ये संसार का चक्र 60,000 साल का है, अरस्तु ने उसके मतलब 100-150 साल बाद आकर के ये कहा कि 6,000 का।
चलो आस पास तो फिर भी
हाँ पहुंच गया, मतलब भाई मैं देखता हूँ ये क्रिश्चियंस भी पहुंच गए, ये भी 3,000 साल पहले क्या था, क्रिश्चियंस भी यही कहते हैं कि ऐसा 3,000 साल पहले स्वर्ग था,
तो उससे भी अरस्तु से भी काफी,
हाँ मतलब भाई मतलब जो भी है, पर कहने का मतलब हमें समझना है इस बात को कि कितना मतलब जो है ना बाबा इसीलिए कह रहे हैं वो कितने समझदार हैं, महान बेसमझ हैं भारत के, ठीक है नहीं, इन्हें ही महान ते महान समझदार बनाते हैं, जो महान बुद्धू बन गए उन्हीं को बाबा कहते हैं मैं आकर महान समझदार बनाते हैं, परंतु फिर भी याद रहे तब बाबा तुम बच्चों को कितना सहज करके समझाते हैं, मुझे याद करो तो तुम सोने का बर्तन बन जाएंगे, तो धारणा भी अच्छी होगी, याद की यात्रा से ही पाप कटेंगे, मुरली नहीं सुनते तो ज्ञान रफू चक्कर हो जाता, बात तो रहन दिल होने के नाते उठने की ही है, बाप तो रहन दिल होने के नाते उठने की ही युक्ति बतलाते, उठने की ही युक्ति बतलाते हैं, हाँ अंत तक भी सिखलाते ही रहेंगे, लास्ट तक बाबा कहता है मैं सिखलाता रहूंगा। अच्छा आज भोग है, भोग लगाकर जल्दी वापस आ जाना बाबा कैसे देखो ना भाई संदेशों से कह रहे हैं, भोग लगाकर जल्दी वापस आ जाना, बाकी वैकुंठ में जाकर देवी देवताओं आदि का साक्षात करना ये सब फालतू है, इसमें बहुत महीन बुद्धि चाहिए। बाप इस रथ द्वारा कहते हैं मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन तुम्हारा बाप हूँ, तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं, ये यहाँ के लिए है, ऊपर में कैसे होगा, बड़ी गुह्य लाइन है। मैंने सवेरे सोचा था कि जब प्रश्न बोलूंगा तो मैं इसका क्वेश्चन नोट करके ही इसको बनाऊंगा, बड़ा वंडरफुल राज जो है ना यहाँ पर खोला है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। कहनी बापा बाबा इस रथ द्वारा कहते हैं ब्रह्मा के तन तन में बैठ करके मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन तुम्हारा बाप हूं, तुम्ही से रखाऊं तुम्ही से खाऊं, तुम्ही संग खेलूं तुम संग बैठूं तुम संग मतलब जो है ना रास रचाऊं, मतलब जो कुछ भी करना है मेरे साथ करना है, वो यहां करना है, वहां ऊपर थोड़ा करना है, ऊपर ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना, तो यहाँ आपने खेलना है तो मेरे साथ खेलो, बैठना है तो मेरे साथ बैठो, खाना है तो मेरे साथ खाओ, यहाँ बैठो ना, तो खाने के लिए भी मुझे याद आ रहा है ब्रह्मा बाबा के टाइम पर, मतलब ऐसा होता था वो नए किसी ना किसी भाई को अपने साथ विशेष खाने पर बिठाते थे, तो एक भाई अपना अनुभव सुना रहा था कि मैं सोच रहा था कि मैं भी पता नहीं कब बाबा के साथ बैठकर खाऊंगा, इतने में अनाउंसमेंट होती है चलो उसने अपना अनुभव सुनाया, तो मतलब कहने का यह है कि अनाउंसमेंट होती है कि आ जाओ बाबा, मतलब ब्रह्मा बाबा, ताकि उनको एक रहे कि हमने भगवान के साथ बैठकर खाना खाया, तुम्हारे खाने से मुझे अब याद आया, मैं खाऊं, तुम यहीं खा यहीं पर खा सकते हो ना मेरे साथ, ऊपर तो ना खा सकते हैं, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ऊपर खाना भी नहीं, ऊपर मैं भी नहीं, ऊपर तुम भी नहीं, ऊपर कुछ नहीं करना, यहीं पर खाना है, यहीं पर बैठो, ठीक है नहीं, यहीं मेरे साथ तुम बात कर रहे हो तो मेरे साथ रह रहे हो, मेरी श्रीमत मेरी उंगली पकड़ रखी है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी उंगली पकड़ रखी है तो मेरी उंगली पकड़ कर खाना खाओ, मेरी उंगली पकड़ करके आपने जो कुछ करना है करो, तो यहीं पर आप संग ले सकते हो। ये यहां के लिए, ये यहां के लिए, ऊपर में कैसे होगा? ऊपर में जो दिखाते हैं कि बाबा ने गिट्टी खिलाई, उसको खिलाई, इसको खिलाया, बाबा ने ये कहा, ये सिर्फ क्या होता है, संदेश होता है। और ये भी ड्रामा में जिनके लिए नूंद है उनके लिए ही बाबा देते हैं, बाकी सबके लिए ऐसा संदेश नहीं देते। बाकी ये जो सारे संदेश हैं वो ड्रामा अनुसार बनाए हुए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, बाप इस दादा में प्रवेश करते हैं, बाप इस दादा में प्रवेश हो हमें मनुष्य से देवता अर्थात विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए गीता का ज्ञान सुना रहे हैं, इसी निश्चय से रमण करना है, श्री मत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना है, याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है, ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे इसके लिए मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। वरदान, अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भाव, निरंतर क्या बनो, योगी बनो। जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपनी पोजीशन को कभी भूलते नहीं, कभी अपनी पोजीशन को भूलते नहीं, ऐसे आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिमान। इसे सदा स्मृति में रखो और रोज अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करो तो निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहेगा। फिर मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे माया आ नहीं सकती। जिसने सारी शक्तियों को अपने नियंत्रण में कर लिया है, उनके कहे अनुसार शक्तियां काम करती हैं, तो माया उनके पास कैसे आएगी? हमारा है परंतु मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे, मतलब जब हमने अपनी सारी शक्तियों को अपने कंट्रोल में कर लिया है, जब हम जिस शक्ति को बुलाएं वो आ जाती है, तब माया हमारे पास नहीं आ सकती ना। सिर्फ नाम रखने से तो ना माया रुक जाएगी, क्योंकि नाम से तो वो डरती नहीं है, वो तो प्रैक्टिकल। जब आप अपनी स्मृति को की ऊंची स्टेज पर रहेंगे तो माया चींटी को जीतना सहज हो जाएगा। माया क्या है? चींटी। आज तो चींटी बना दी है, वरना कागज का शेर कहता है, ठीक है नहीं? आज चींटी बना, चींटी तो फिर काट सकती है, कागज का शेर तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है नहीं? चींटी तो हाथी को भी क्या करती है, पछाड़ देती है। स्लोगन, आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। मनोज जायसवाल कुछ पूछना चाहते हैं क्या?